मैंने जो फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस था, अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन हूं, फिर अपने बैकवर्ड क्लासेस का जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है अपने, तो उसको जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के बारे में भारत सरकार की सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री को हम एडवाइस देना पड़ता है, अपने बैकवर्ड क्लासेस को कैसा उन्नति करें, अपने भारत में अपने पिछड़े वर्गों को क्या क्या अपने करना चाहिए, क्या सुविधा है अपने सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, उसको कैसा अपलिफ्ट करना चाहिए, फिर इसके बारे में जही अपने कहीं एडवाइस अपने सलाह देना पड़ती है उसके वास्ते, फिर हम स्टडी अपने पूरा भारत में अपने फिर के अपने स्टडी करना पड़ता है, उसकी बारे में अपने आज की अपने रमेश शाह इन इज ए फिलासफर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट रिनाउंड इज ए लॉ ग्रेजुएट आल्सो, ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसका अपने यूरोपियन सर्विसेज का हेड अपने स्वदेशी सिस्टर ने इसका बीच में मेरे यहाँ आने का और उसके अपने पैनल डिस्कशन में शामिल होने का बहुत खुशी है।
मेरा नाम रमेश शाह है, मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ फिलोसॉफी आदि का स्टडी कर करके आध्यात्मिक दुनिया के अंदर अनेक प्रकार की बातों का कारोबार करता हूँ और समाज के अंदर आध्यात्मिकता के द्वारा, फिलोसॉफी के द्वारा समाज का उत्थान कैसे हो उसके बारे में जितना हो सके इतना प्रयत्न करता हूँ।
मैं ब्रह्मा कुमारी स्वदेश हूँ, जैसा कि आपने पहले ही सुना हमारे परिचय में, मैं वैसे तो ओरिजिनली तो अपने भारत देश की हूँ, परंतु लास्ट 40 इयर्स से विदेश में सेवा पर उपस्थित हूँ और वर्तमान समय यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी इस सेवा पर विशेष उपस्थित हूँ।
भारत की संविधान में जो प्रियम्बिल में है जो अपने जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो सोशल जस्टिस लाना चाहिए जो भारत सरकार को, वैसे अपने यही संविधान में यही है और अपने जो डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स को भी, हर एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट को, उसका मान सम्मान उसको जो प्रोटेक्ट करना चाहिए, और फ्रेटर्निटी ऑफ द ब्रदरहुड, अपने को यूनिवर्सल ब्रदरहुड ये होना चाहिए, और नेशनल इंटीग्रेशन भी रहना चाहिए एमंग द कास्ट कम्युनिटीज रिलीजन रेसेस, वैसा पूरा भारत की एक एकता कैसा होना चाहिए, ऐसा इसकी प्रयत्न में भारत सरकार जो है अपने पिछड़े वर्गों के उन्नति के वास्ते उसको जो रिजर्वेशंस देता है एजुकेशन में, एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट में भी और इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स को भी करते हैं, मगर जितना जितना करोड़ रुपए खर्च करके उसको इतना सुविधाएं दिए बाद भी फिर अपने पिछड़े वर्ग और पिछड़े ही रह सकरा और सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी तक भी है दुनिया में, फिर हम इतने कार्य कर पाए अपने, फॉर एग्जांपल अपने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में एवरी अपने बैकवर्ड क्लासेस को अपने हाउसेस बना लेते हैं, उसको फ्री एजुकेशन देते हैं, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देते हैं, फिर भी अपने को जितना उन्नति होना चाहिए उतना उन्नति नहीं है, मगर यहाँ जो अपने यहाँ स्टडी करने के आया है फिर अपने यहाँ ऐसे अपने डिस्पैरिटीज कुछ नहीं दिखने आ रहा है, उसके बारे में यहाँ स्टडी करने को कैसा फिर अपने भारत को ये अपने सरकार के भी क्या कदम उठाना चाहिए इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को इराडिकेट करने के वास्ते, उसको रिमूव करने के वास्ते, सोशल जस्टिस पाने के वास्ते क्या कदम भी भारत सरकार के उठाना चाहिए, हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की आगे भी क्या जिम्मेवारी है इसका, जो अपने जो अनुभवी एक तो बड़ा अपने रमेश भाई है, अपने सुदेश भाई है, मैं अपने रमेश भाई से पूछता हूँ क्यों अपने सोशल अपने डिस्क्रिमिनेशन पिछड़े वर्गों की कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसको कैसा अपने फिर इराडिकेट करना चाहिए, फिर अपने भारत सरकार के जो भी कदम उठाए है फिर भी अपने कास्ट अपने कंसंट्रेट हो रहा है, पूरा अपने इराडिकेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी अपने पिछड़े वर्ग की उन्नति नहीं हो पा रहा है, और क्या अपने क्या अपने आपके जो विचार क्या है इसके बारे में ब्रदर रमेश भाई जी,
आपने जो बताया बात वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज का जो उत्कर्ष करना है, उत्थान करने का है, सिर्फ कानून के द्वारा नहीं हो सकता है। भारत सरकार जैसे मानती है सत्यमेव जयते, इसके लिए भारत सरकार सबको कहे कि कल से सबको सच्चाई बोलना है, सत्य ही बोलना है। इस प्रकार से सत्य बोलने की बात सबको नहीं कर सकेंगी। ऐसे कर कानून सरकार को करे, सरकार करे कि कल से किसी को चोरी नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चोरी करने का बंद कर दे। या इस प्रकार से जो भी है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात, उसके लिए थोड़ा आध्यात्मिकता का बल भी चाहिए। आध्यात्मिकता का बल के आधार पर क्या होगा, सबको लगेगा समानता जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब तक समानता नहीं आई है तब तक जो है एक ईश्वरीय कानून को जो दुनिया के लोग नहीं समझेंगे तब तक जो है स्थूल दुनिया के कानून जो है उसका प्रभाव पड़ सकता है। और उसमें भी टेलीविजन है, पश्चिम की दुनिया की विचारधाराएं है, इन सब विचारधाराओं के कारण भी हमारे समाज में समस्या खड़ी होती है। इसलिए इसके बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसके सोल्यूशन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ठीक है ना सुदेश बहन?
यह बराबर है ये बात, परंतु जब तक ये आध्यात्मिकता आध्यात्मिक रियलाइजेशन भी मतलब चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ समाज में नहीं है, फैमिली में भी है, परिवार में पहले शुरू होती है, और जब घर में परिवार में से ही डिस्क्रिमिनेशन है तो वो जो सीड है जब तक वो अपरूट नहीं हुआ है तो नेचुरली परिवार से समाज में जाता है, समाज से देश में जाता है, देश से फिर दूसरे स्थानों पर फैलता है। तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम, हम बेशक देश से उन्मूलन करना चाहते हैं, पहले इंडिविजुअल जो है ना, इसमें भी एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभी इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बड़े सटल वेज में ये भी डिस्क्रिमिनेशन अपने आप से और दूसरों से करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता का बल, जैसे आपने कहा, ये बहुत जरूरी है, जिससे आत्मा को बल मिलता है, आत्मा समझ आती है।
आपने जैसे कहा कानून के द्वारा, इस प्रकार से सरकार ने कानून के द्वारा हिंदू परिवारों के अंदर सरकार ने कर दिया कि जो भी माता पिता जो है उसकी जो एस्टेट जो होती है वो बेटा और बेटी के बीच में समान हिस्से द्वारा बांटना चाहिए। और परंतु उसमें कानून ने रख दिया कि अगर कोई पिता जो है या तो माता जो है अपना विल बना लेती है तो विल बनाने के बाद विल में जैसे लिखा हुआ होता है उस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ में हजारों विल बनाए हैं, हजारों परिवार से मैं संपर्क में आया हूं। हर एक माँ बाप जो भी है वो डिस्क्रिमिनेशन करता ही है, अपने बेटों को ही ज्यादा देता है, बेटी को बहुत कम देते हैं, और सब अपने विल में लिखवाते हैं कि हमने हमारी बेटी को उनकी शादी के टाइम पर जो देना था वो दे दिया। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन जो है, सरकार आगे बढ़ गई है, कानून आगे बढ़ गया है, पर तो समाज की व्यवस्था जो है वो आगे नहीं बढ़ी है। और इसके लिए ही आध्यात्मिकता का बल चाहिए, आध्यात्मिकता की शक्ति चाहिए। आध्यात्मिकता की शक्ति की आ जाएंगे आएंगी और समानता की शक्ति आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, घर में भी जैसे आपने बताया, सुदेश बहन ने बताया कि घर के अंदर भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक सास जो होती है अपनी बेटी और अपने बहू के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है और बेटा और बेटी में डिस्क्रिमिनेशन करता है। कई बार तो कहीं हम पिताजी जो है बड़े बेटे या छोटे बेटे के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन प्रकार का जो है, इन सब के लिए एक एजुकेशन की जरूरत है और एजुकेशन के लिए ही कारोबार होना ही चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए।
तो भारत तो सोशल कंट्री है, उसमें जो मुस्लिम्स भी है, हिंदूस भी है, क्रिश्चियंस भी है, फिर अपने कैसी आध्यात्मिकता का अपने पढ़ाई विद्या होना चाहिए, क्योंकि अपने को भारत में भौतिकता बारे में पढ़ाई जाता है अपने एलिमेंट्री स्कूल में, स्कूल में, कॉलेजेस में और वर्क प्लेस में। आध्यात्मिकता अपने जो कोई भी स्टडी अपने कोई भी पढ़ाई में अपने भारत में है नहीं है, मगर भारत की जो बहुत उन्नति अपने औन्नत्य देश माना जाता है पूरा दुनिया में, पुरानी संस्कृति पुरानी देश माना जाता है, मगर आध्यात्मिकता कैसे फिर अपने आध्यात्मिकता से कैसे फिर अपने के सोशल अपने सोशल अपने डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दी सोशल कास्ट है सोशल जस्टिस देन हाउ टू देन आध्यात्मिकता कैसी, क्योंकि मुस्लिम्स बोलेंगे अपने कोई भी अपने को एनी लेसन अपने हिंदू शास्त्रों के बारे में वो लोग इतराज करेंगे, और अपने कोई भी अपने आध्यात्मिकता बारे में कुरान के बारे में नहीं तो गीता के बारे में बाइबल के बारे में बोलते देन देर विल बी सम काइंड ऑफ द कांसेंट अपने ये अपने भेदभाव आता है. सो कैसी आध्यात्मिकता, कैसी स्टडी, कैसी विद्या होना चाहिए?
एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो अपना यूनिवर्सिटी है उसका नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय. ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय. तो फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, चाहे उनको एडम कहो, चाहे उनको आदम कहो, चाहे उनको प्रजापिता कहो, तो एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. और ये भी है कि यहाँ इस एजुकेशन में ये भी नहीं है इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन कि लड़कियां पढ़ सकती हैं और लड़के नहीं पढ़ सकते. परंतु ये एजुकेशन जो है ये परिवार सहित है, क्योंकि ईश्वर ये परिवार की तरह है, इसमें परिवार के परिवार आते हैं. तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता कि कुछ एजुकेटेड हो गए, कुछ नहीं हुए, बड़े होने के बाद एजुकेशन मिलेगी. एक्चुअली 3 जनरेशन तक ये स्टडी चलती है. फादर भी है तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर भी है तो बच्चे भी इस पढ़ाई को पढ़ते हैं. उस पढ़ाई में एक विशेष प्रकार की पढ़ाई है, क्योंकि चाहे कुछ क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे किसी भी जाति के हैं, रूह को तो सब मानते हैं और सेल्फ डेवलपमेंट सभी मानते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सभी जानना चाहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में, सिचुएशंस को मैनेजमेंट करना सभी चाहते हैं. तो ये जो ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ाई जाती है, विद्यालय है, उसमें ब्लाइंड फेथ नहीं. क्योंकि स्टडी का मतलब न फियर हो न ब्लाइंड फेथ हो. तो उस बेसिस पर ऑटोमेटिकली जब आध्यात्मिकता का बल, हम जब आध्यात्मिक कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं, नहीं, लाइफ की स्टडी है, स्वयं को स्टडी करना. तो जब स्वयं को स्टडी करते हैं तो स्वयं में हमारे पास सेल्फ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमको धोखा दे रही हैं, कौन सी चीजें हैं जो समाज को धोखा दे रही हैं, कौन से पर्सनालिटी है किस तरह की जो परिवार को दुख दे रही है, क्योंकि एक स्थान से बढ़ करके वातावरण में फैलती है. तो हम जब सेल्फ की स्टडी करके सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेल्फ को इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो नेचुरली उसमें ऑटोमेटिकली भाषा भेद, धर्म भेद, जाति भेद खत्म हो जाता है.
परंतु एक बात मैं एक और ऐड करूं उसमें, कि आपने जो कहा धर्मों के आधार पर समस्या हो सकती है, इसलिए हिंदू का अपना विचारधारा होती है, मुसलमान का. परंतु एक धर्मों के अंदर भी दो बातें हैं, एक शरीर का धर्म जो है, जिसका जिस धर्म में जन्म हुआ होगा उस धर्म को मानते हैं, परंतु दूसरा एक है जैसे बहन जी ने बताया कि हम रूह है, हम आत्मा है, आत्मा का भी अपना स्वधर्म है, और जिसके कारण दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, सभी धर्मों के अंदर, मैंने दुनिया के 10 प्रसिद्ध धर्म जो है उसका स्टडी किया है, और सभी धर्मों में जो फंडामेंटल वैल्यूज जो है, वैल्यूज तो सभी धर्मों में कॉमन ही है, और इसलिए जो कॉमन वैल्यूज है उसके आधार पर कारोबार सिखाया जाए, और उसके आधार पर वो कॉमन वैल्यूज का डेवलपमेंट का कारोबार किया जाए, तो ये सोशल जस्टिस की जो बात है वो बहुत सहज हो जाएगी. और फंडामेंटल जो है हम आत्मा के रूप में देखते हैं, वैल्यूज के रूप में देखते हैं, तो फिर जो सशक्तिकरण की बात आती है, क्योंकि कार्य करने वाली जो है वो शरीर नहीं है परंतु आत्मा है, आत्मा ही शरीर के द्वारा कार्य कराती है. तो जो जिसको कहते हैं कि इफ यू गो टू द रूट्स, अगर कार्य करने वाला कौन, अगर आत्मा है और आत्मा के द्वारा कारोबार होता है, तो आत्मा को सशक्तिकरण करे, उसके अंदर शक्ति भरे, तो क्या हो जाएगा कि जो भी कारोबार करना चाहते हैं आत्मा, और उसके आधार पर जो भी कारोबार होगा सशक्तिकरण का होगा, समाज में जो भी डिस्क्रिमिनेशन आदि जो भी है वो सब दूर हो सकते हैं. क्योंकि आत्मा के दृष्टिकोण से सिखाया जाए, और ये सिखाने का जरूरी है कि सभी आत्माएं भाई भाई है या तो भाई बहन है, और भाई बहन की दृष्टि डेवलप करे तो हर एक जाएगा कि हमारे भाई को या हमारी बहन को उसका आध्यात्मिकरण हो, उसका उन्नतिकरण हो, इस प्रकार से हो सकता है.
जो भारत सरकार का ये कदम उठाता है, भारत सरकार ने जो पिछड़े वर्गों को उन्नति के वास्ते, जो समाज स्थापन करने के वास्ते, फिर उसको पिछड़े वर्गों को कैसा फिर अपने आपने जो एजुकेशनली उसको एजुकेशन दिए, एम्प्लॉयमेंट दिए उसको, और वेलफेयर मेजर्स को उसको जो अपने जो भी है अपने ऑक्यूपेशनल प्रोफेशन है उसको फाइनेंस करे, घर बनाए, अपने बेसिक फैसिलिटीज उसको सौंप दे, सो दैट वो लोग भी फिर उसको आर्थिक अपने उसको बढ़ावा होता है, और एजुकेशन भी एजुकेशन होने से फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है, फिर भी 63 ईयर्स भारत अपने को स्वतंत्र हुई है, फिर भी जितना उन्नति होना चाहिए उतना उन्नति नहीं है, फिर अपने को कब तक, और इसके जो भारत सरकार के जो कदम उठा रहा उसके अलावा आपका विचार कुछ है, और जल्दी अपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो इराडिकेट करें फिर अपलिफ्ट करके अपने पिछड़ो वर्गों के, क्योंकि आपको तो मालूम है कितने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अपने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स को एक एक को अपने को अपने गांव में अभी भी आजकल के गांव में भी अपने जो अपने ये भेदभाव बहुत रहता है, जो उन्नति अपने जो ब्राह्मण है क्षत्रिय है अपने अपने वैश्य है ये पिछड़े वर्गों की अपने उसको कुएं में अभी तक पानी नहीं दे देते उसको, सेवरल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन रहता, ये डिस्क्रिमिनेशन का एकदम उसको मानव भावना कैसा चेंज हो सकता है, कैसा फिर एकता आ सकता है अपने?
इसके लिए तो बहुत सहज बात है, जो फंडामेंटल बातें जो है आज जो आपने कहा सरकार जो करती है कदम, सरकार आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्ग जो है नारी है उसके सबका रक्षण करने का प्रयत्न करती है कानून के द्वारा, और उसके लिए नौकरी दिलाने का कारोबार करती है, उनको पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई में भी उनको फ्री एजुकेशन मिले उस प्रकार का करते हुए, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर फक्त धर्म जीवन मनुष्य जो है पर पैसे के कारण सुखी नहीं बन सकता है, और कहने में भी आता है पैसे से आप घर बना सकते हैं तो पैसे से आपको शांति नहीं मिल सकती, पैसे से आप किताब खरीद कर सकते हो परंतु पैसे से आप विद्या नहीं जीवन में धारण कर सकते हो, तो इसके लिए धर्म के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आध्यात्मिकता का भी बल होना चाहिए, और भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, 1986 में भारत सरकार ने एजुकेशन की डेफिनेशन बनाई, एजुकेशन मीन्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति जिसके द्वारा जिस शिक्षा के द्वारा हो उस प्रकार से होना चाहिए, इसलिए जो भारत सरकार भी चाहती है और दुनिया में हम लोग भी चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है, तो आज की दुनिया में सरकार जो है भौतिक डेवलपमेंट का कार्य करती है, हम सोशल संस्थाएं जो भी है समाज जिसको एनजीओ कहते हैं वो इस प्रकार से आध्यात्मिक सशक्तिकरण का कार्य करें और आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का जो कार्य करें तो दोनों का समाज में एक समान हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, इसके अंदर सरकार को भी एक बात ध्यान में रखने की है कि आध्यात्मिकता और धर्म के बीच में फर्क है, धर्म जो है हर एक का अपना अपना धर्म है, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है जो भी धर्म जन्म के आधार पर बना हुआ है, परंतु जो आध्यात्मिकता का है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो है उसके आधार पर व्यवहार करे और वो व्यवहार सिखाया जाए तो बहुत ही अच्छा कारोबार हो सकता है, ऐसा हम सब मानते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, हमने कई जगह पर इसका अनुभव कराया समाज के अंदर कई संस्था, क्योंकि मैं भी कई सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ संलग्न हूं तो हमने देखा है ऐसे सोशल संस्थाएं जो भी है और उस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति का समाज में प्रयत्न करते हैं तो जो भी लोग आते हैं, क्योंकि एक बात ये भी है पिछड़े हुए लोग जो है उसके अंदर एक प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो लघुता ग्रंथि जो है उसको दूर करने के उनके अंदर भी इस प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए कि उसके अंदर भी ये जो भी लघुता ग्रंथि है कि नहीं आप सब हम सब परमात्मा की रचना है और परमात्मा की रचना है, इसके कारण न कोई आगे है न कोई पीछे है, जो भी है सबको समान बुद्धि मिली है, सबका देखो सबको दो हाथ मिले हैं, सबको दो पग मिले हैं, सबको दो पांव मिले हैं, सब कुछ तैयार है, तो इस प्रकार से सब बातों में भगवान ने इक्वालिटी रखी हुई, तो भगवान ने तो सृष्टि रची तब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने बनाया और इसलिए हम लोगों को भी आध्यात्मिकता के द्वारा आध्यात्मिकता के बल द्वारा ये समाज के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको दूर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सुदेश बहन आप क्या मानते हो?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, परंतु
भाई साहब एक बोला अपने पिछड़े वर्गों की भी मनोभावना अपने अपने उसका मेंटल एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, मगर जो अपने जो फॉरवर्ड क्लासेस है उसका भी मेंटल चेंज होगा तो अब जल्दी अपने सोशल जस्टिस मिलेगा, ये क्या है अब आपका विचार क्या है?
एग्जैक्टली देखिए मैं दोनों रीति से ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही रॉन्ग हैं, दोनों ही वीकनेसेस हैं, वीकनेस को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाने देगी। तो जब ये भावना स्पिरिचुअलिटी से आ जाती है कि ये शरीर का जो भी पोजीशन है जो भी हमारा नेम है या हमारी अथॉरिटी है ये इस बॉडी कॉन्शियस के कारण है, तो हम इन रियलिटी तो ये शरीर नहीं है ना, शरीर में रहने वाली आत्मा चैतन्य एनर्जी है, जो लिविंग एनर्जी है, उस लिविंग एनर्जी की क्वालिटी ओरिजिनली इटर्नली इक्वल है, यानी सेम है। उसमें बेशक डेवलपमेंट अलग अलग है, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन अलग अलग है, परंतु एज ए सोल, एज ए रूह, एज ए आत्मा, इसको कहा जाता है लिविंग एनर्जी स्टार। तो लिविंग एनर्जी में तीन चीजें एक इटर्नल हैं, लिविंग लाइट में कहा जाता है लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। उस लाइट में जैसे दीवा जगता है तो तीन चीजें इकट्ठी प्रकट हो जाती हैं, लाइट, फायर, हीट एंड ऑरा फॉर्म। लाइट बुझी, तीनों चले गए, बराबर ऐसा होता ना, ऑफ हुआ तो लाइट। तो ऐसे सोल गई तो माइंड भी गया, इंटेलेक्ट भी साथ में गई, पर्सनालिटी भी चली गई। कहा जाता ना ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, ये बड़ा काइंड था, ये बड़ा जेनरस था, ये बड़ा लविंग था। तो उसकी जो स्पेशलिटीज उसमें सोल में थी, बॉडी में नहीं था। तो जब ये शरीर में रहते हुए ये रियलाइज हो कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी आत्मा इस होल संसार में, इस यूनिवर्स में प्ले करने वाली यहाँ पर, या अभी नहीं भी आई है सृष्टि मंच पर, तो तीन फैकल्टीज हर एक आत्मा में है। जैसे ऑर्गन्स है, जब मनुष्य कहा जाता है तो फिजिकल ऑर्गन्स इक्वली हैं, वो मैटर की ब्यूटीफुल नेचर की गिफ्ट है, बट इटर्नल गिफ्ट एज फैकल्टीज ऑफ द सोल इक्वल हैं। ऐसे नहीं कि किसका मन है ही नहीं, हर एक आत्मा का मन है। तो हमको जो ओरिजिनल सीड में जल डालना होगा, हम क्या कर रहे हैं, पत्ते काट रहे हैं कोशिश करके, जो बाहर का एक्सपेंशन हो चुका है ना अभी, तो पत्तों को जल दे रहे हैं, अथवा पत्ते इराडिकेशन जो है, कोई जो चीजें बाहर खराब हो गई हैं, सड़ गई हैं, उनको रिपेयर करना चाहते हैं। परंतु हमको पहले तो सीड को जल देना पड़ेगा, और वो है सोल। तो सोल को, सोल कॉन्शियस का वाटर, कि लेट देयर बी पॉजिटिव एनर्जी एंड थिंक इफ व्हेन यू वांट गुड फॉर योर सेल्फ, यू सेल्फ, इट मीन्स द अदर इज ऑल्सो लिविंग सेल्फ, एंड सो दिस पॉजिटिव फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। सो माइंड में पॉजिटिव एनर्जी, इंटेलेक्ट में क्लैरिटी एंड श्योरिटी दैट यस ऑल ऑफ अस आर ओरिजिनली एज सोल बीइंग एंड इटर्नल संस्कार एज वैल्यूज इन एट क्वालिटीज ऑल ऑफ अस हैव। सो व्हेन वी हैव दिस राइट एज अ स्पिरिचुअल बर्थ राइट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, वी हैव द राइट, वी आर जेनरस टू गिव, लेट अदर्स ऑल्सो हैव द सेम राइट। देन फ्रॉम इंटरनल, इटर्नल, वट इज इंटरनल, दैट इज वट इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सटर्नल फॉर्म।
एक बात बताऊं, आपने जो कहा ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए तो आर्थिक समस्या का जो है, आर्थिक बल जो है इस प्रकार से जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके अंदर भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में क्या हो गया है, सर्वे गुणा कांचना माश्रंत इस प्रकार से मान्यता है, परंतु पिछले वर्षों में शास्त्रों के अंदर ऐसी बात नहीं थी। समाज के अंदर सबके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो था उसके कारण सब जो जो धर्म का जो जो कार्य करता था वो कार्य को उसका महत्व थोड़ा इम्पोर्टेंस देते थे, और इसके कारण क्या था कि विलेज बॉज एज ए यूनिट काम करता था। एक किसी के घर के अंदर शादी होगी तो सारे गांव के सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाते थे और सब साथ में मिलकर के भोजन खाते थे। तो इसलिए इस प्रकार का, और सब ये जानते भी है कि हमारा जो शरीर जो है वो तो इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल शरीर है, और साथ में क्या आने वाला है, साथ में हमारा जो धन जो है इकट्ठा किया है वो साथ में, तो धर्म किसी के साथ नहीं जाते। शंकराचार्य ने भी कहा हुआ है कि धनानी भूमौ पशवस्य गोष्ठे भारिया गृहे जन श्मशान है, धन भी यहाँ रहता है, पशु पंखी जो होते हैं वो भी यहाँ रहते हैं, सभी यहाँ रहते हैं, पत्नी भी यहाँ, बच्चे भी यहाँ रहते हैं, आपको आगे अकेले जाना है। तो उस प्रकार से वो दृष्टिकोण से जो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो ऑफ लाइफ है, जो आपने जो कहा स्पिरिचुअल डायमेंशन, उस स्पिरिचुअल डायमेंशन का ज्ञान शंकराचार्य आदि ने शास्त्रों में भी दिया हुआ है, और वो स्पिरिचुअल डायमेंशन का ज्ञान फिर से समाज के अंदर आ जाए कि आपको ये साथ में क्या आने वाला है उसका भी करो। आज ये जीवन नहीं है परंतु भूतकाल का भी जीवन है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के दृष्टिकोण से विचार करे मनुष्य तो इसके आधार पर सोचेगा कि हमें अपना भविष्य के लिए क्या करना है, और उसके कारण क्या होगा, कि समाज के अंदर जो भी कार्य करने वाले, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को अपनी आमदनी जो है उसका 10% जो है समाज के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। पहले जमाने में टैक्सेस आदि नहीं था और समाज के अंदर सभी अपनी जिम्मेदारी समझ करके कारोबार करते थे। आज वो समाज के अंदर तो धनवान जो है वो सोशल समाज के लिए कार्य नहीं कर रहा है, धन के और धन का उपयोग नहीं कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो गया, इसके कारण सरकार को भी टैक्सेस आदि लगाना पड़ा। वो टैक्सेस नहीं लगावे और अगर सब अपनी ड्यूटी समझ करके कारोबार करे तो धन का और जो है उसके द्वारा जो आपने जो कहा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकती है। ये प्रयोग बहुत सुंदर भारत के अंदर पहले जमाने में भी हुआ है और भारत का ये आध्यात्मिक संदेश जो है दुनिया सब मानने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोगों को भी, धन वालों को भी ये समझाना चाहिए कि आप इस प्रकार से समाज का कल्याण करिए। इसलिए तो समाज का कल्याण करने के लिए सरकार ने अभी कदम उठाया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक कंपनी को जो है उसका जो प्रॉफिट है उसका 2% जो है इनकम जो है वो समाज के कल्याण के लिए यूज करना चाहिए। जो करते नहीं है तो इसके कारण कानून के द्वारा कंपल्सन करना पड़ा। अगर वॉलंटरी काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, वॉलंटरी काम नहीं होता है इसके कारण ही इस प्रकार का कारोबार करना पड़ा कि कंपल्सरी करना पड़ा है। इनकम टैक्स भी क्या है, एक प्रकार का कंपल्सन है कि आपकी जो इनकम जो है आपकी वेल्थ है उसको समाज के सेवा के लिए सरकार को दो, सरकार इस प्रकार से कारोबार करे।
सोशल डेवलपमेंट है तो उसको एजुकेशन मिलता
जी,
एजुकेशन आए तो फिर उसको नौकरी मिलता, फिर अपने को उसको इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता उसको। दिस इज वन इश्यू टू डेवलप द सोशली एजुकेशनल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, एक है। अपने बैकवर्ड क्लासेस को किस आधार से उसको बैकवर्ड क्लासेस माना जाता है, उसको जो कल्चर है, उसको जो अपने आचार व्यवहार है उसको, और उसमें फॉर एग्जाम्पल आजकल के देखो एक एक कास्ट में भी एक विचित्र अपने एक कल्चर है उसको, एक हानर किलिंग्स आपने सुना हुआ होगा उसकी, उस एक कास्ट की जाति का एक लड़की दूसरे से शादी करे तो उसको खत्म कर देते वो कास्ट वाले, हानर किलिंग उसको, वैसा इतने सुपरस्टिशियन सा है क्योंकि उसका वो समझते हैं, मगर दिस इज द बैकवर्डनेस ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट एंड कम्युनिटी। देन एजुकेशन भी थोड़ा लोग एजुकेशन नहीं पढ़े तो भी इतना हानर समझते थोड़ा लोग, फिर अपने के उसका जो परंपरा से जो, फिर भी भारत सरकार कितने भी कदम उठाए, जितने भी अपने हॉस्टल्स खोले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले, अपने पूरा हाल अपने कास्ट कम्युनिटीज का एक स्कूल बनाए, फिर भी अपने को इफ यू गो टू द रिमोट विलेजेस, अर्बन में डिस्पैरिटी उतना ज्यादा नहीं है, मगर विलेजेस में भी अभी भी एक अपने को देखने को मालूम होता, चाहे अपने को दिखता है कितना अपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, कितना बैकवर्ड क्लासेस है अपने, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडिया 80% लिव्स इन द विलेजेस, इतने अपने इतना बड़ा संख्या को कितना इतना जल्दी सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो रहा है अपने को अपलिफ्टमेंट करने का क्या कदम उठाना चाहिए।
इन्होंने जो बताया भारत का जो पिक्चर ड्रॉ किया, आप देश के जर्मनी में की सेवा करती है तो विदेश के अंदर ये कास्ट सिस्टम आदि बैकवर्ड क्लासेस आदि जो भी है डिस्क्रिमिनेशन जो भी है वो विदेश में कहां तक है और वहां की सरकारों ने कैसे प्रयत्न किया है जिसके द्वारा ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एम्पावरमेंट का जो प्रश्न जो है वो इन्होंने दूर किया हुआ है। वहां क्या कास्ट सिस्टम है?
नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं है वहां पर, परंतु नेचुरली ये तो जरूर है कि समाज में एक आज के हिसाब से जितना हम यूज वर्ड करते हैं बॉडी कॉन्शियस ईगो, वेल्थ की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, इसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है, परंतु हमारे भारत की तरह नहीं है क्योंकि कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम में फिर एकदम जो है वो ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है।
नहीं, मिसाल के तौर पर इन्होंने जो कहा हाँ? एक कम्युनिटी की लड़की दूसरी कम्युनिटी की लड़की
नहीं, वहाँ इस प्रकार से नहीं,
तो वहाँ यहाँ तो हत्या भी करा लेते हैं, कर लेते हैं।
नहीं, वहाँ पर इस प्रकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, क्योंकि मेजोरिटी समाज का सिस्टम ही अलग है, कल्चर ही अलग है। 15-16 साल के बाद अगर लड़की 16 के बाद अगर घर में रहती है तो वो समझती है कि ये राइट नहीं है। पेरेंट्स समझते हैं इसको अपने पास इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लड़का है वो बड़ा हो गया तो उसको अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। माँ बाप के पास रहने के लिए भी वो समझते हैं ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये समझो डिपेंडेंट है। वहां शुरू से ऐसी एजुकेशन देते हैं कि जिस समय आप बड़े हो जाओ तो आपको माँ बाप पर डिपेंड नहीं करना है, और माँ बाप को भी बूढ़े होने तक यही रहता है कि हमको बच्चे बच्ची पर डिपेंड नहीं करना है। ये कल्चर ही अलग है। बाकी जो हमारी सोल के अंदर बॉडी के बॉडली रिलेशन के कारण नेचुरल जो अटैचमेंट है, जो डिपेंडेंसी है, जो एक दो के सपोर्ट है, वो नेचुरली उनको ब्रिंग लेके आती है नजदीक। परंतु ऐसा जैसे हमारे भारत का सिस्टम है कि उनको रहना ही है, वहां पर गवर्नमेंट देती है बुजुर्गों के लिए सब प्रकार का रहने का सिस्टम भी देती है, तो खाने के लिए भोजन भी देती है, तो मकान का किराया भी देती है। जब मनुष्य कमा रहे हैं तो हर एक को 30% अपनी इनकम वो देनी पड़ती है इंश्योरेंस के हिसाब से, ताकि जब वो बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए, तो वो अपने लिए अपना सेल्फ सफिशियंट उनके पास है। तो जो उन्होंने जमा किया हुआ है मनी, वो जमा किया हुआ बुजुर्ग जब बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग बूढ़े हैं, तो बच्चे बच्ची पर डिपेंड नहीं करते, अपनी कमाई से उनको गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट देती है, परंतु उसी परसेंटेज से उनको मिलता है। फिर कभी ऐसा भी होता है कि जो उन्होंने जमा किया है वो उनके उस हिसाब से बीमारी कोई बहुत जबरदस्त है, जमा की हुई इंश्योरेंस के हिसाब से कम है, तो फिर नेचुरली एक मॉरल है सिस्टम भी होता है फैमिली में अथवा सपोर्ट देने में, तो फिर प्राइवेट जहां है तो फैमिली सपोर्ट करती है। इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि टोटल डिस्कनेक्टेड है स्पिरिचुअलिटी का भारत का सिस्टम। रेस्पेक्ट है पेरेंट्स के लिए, है बुजुर्ग हैं, वो दूसरी चीज है, वहां रेस्पेक्ट है परंतु इंडिपेंडेंसी भी है।
हमने एक अनुभव सुना था, पढ़ा था, वॉरेन बफेट करके जो था वो है अभी भी, वो एक जमाने में सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड था, उसका अनुभव हमने पढ़ा था या आया था समाचार। भारत में भी विदेश का समाचार आता है तो वॉरेन बफेट ने अपने जो संपत्ति जो है सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड था, तो उसने अपने धन के बारे में सोचा कि मेरा धन का मैं क्या उपयोग करूं। तो उनके तीन बच्चे थे, तीनों बच्चों को उसने पूछा कि मेरा ये धन है उसमें आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए। तीनों बच्चों ने यही कहा कि पिताजी आपने हमको बड़ा किया है, आपने हमको एजुकेशन दिया है, आपने हमको जन्म दिया, और आगे जब तक हम बच्चे थे तब आपका आपने हमारे को पूरा ही मेंटेन किया है, आपने जो किया जो दिया वो बहुत ही अच्छा किया है, अभी आप अपने धन का मालिक हैं, आप अपना धन को अच्छे में अच्छे जिससे काम में लगाओ। इस प्रकार से उन्होंने भी इस प्रकार का भावना बताई अपने पिताजी के साथ में, और उसके कारण वॉरेन बफेट को फ्री कर दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनसे दूर कर दिया। और इसलिए वॉरेन बफेट जो है, बिल गेट्स जो एक जमाने में दुनिया का नंबर वन प्रसिद्ध धनाढ्य था और माइक्रोसॉफ्ट आदि का, IBM कंपनी आदि का जो भी है उसका चीफ था, उनके पास गया और उसने कहा कि मैं अभी तो मेरी 50% प्रॉपर्टी देता हूं, बाद में भी मेरी प्रॉपर्टी सारी चैरिटी के रूप में देंगे। तो इस प्रकार से धनवान लोग जो है उनके बच्चे भी और बड़े वो इस प्रकार के कारोबार करें और अपने समझे कि हमको हमारे माँ बाप ने जो भी दिया है उसके कारण हम आगे बढ़े हैं, और माँ बाप को फिर कहे कि आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त है और आप समाज के कार्य के लिए अपना धन आदि का प्रयोग करिए, उपयोग में लाइए। तो इस प्रकार से एजुकेट करना पड़ेगा, धनवान लोगों को भी करना पड़ेगा और उनके बच्चों को भी करना पड़ेगा।